चार तीन ना छाती का पैकेट लाया, रिकॉर्ड चला है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। सोलह नंबर के रजिस्टर में 78 पेज। ये बाप कहते हैं बच्चों के प्रति, ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा की और किसके होते नहीं है। क्या बाप कहते हैं, बाप क्या कहते हैं? रिटायर्ड में जो बात चली तो बाप कहते हैं बच्चों के प्रति कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये कौन से बाप कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है? सुप्रीम कोर्ट बात उसको तो जरूरत ही नहीं है गिरने और संभलने की, तो कौन से बाप की बात हुई? जो मेले में कहते हैं यह बाप कहते हैं बच्चों के प्रति, कौन से बाप कौन से बच्चों के प्रति कहते हैं? जरूर प्रजापिता की बात है कि प्रजापिता अपने साकार बच्चों से कहते हैं कि हमें उन राहों पर चलना है, बच्चों को भी और हमें भी उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना भी होता है और संभलना भी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, तुम्हें समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं है। इतने बच्चे, इतने साकार में बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसी को नहीं होते। कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, प्रजापिता क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि प्रजा माना 500 करोड़ प्रजा, और 500 550 करोड़ जो भी मनुष्य शक्ति है सबका पिता कसी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कसी तो सतयुग में जन्म लेगा और सतयुग में तो उससे एक ही दो बच्चे आएंगे। आप चलो ब्रह्मा की बात है, कृष्ण की आत्मा की बात समझ लो। कृष्ण की आत्मा संगम युग में ब्रह्मा का पार तो बन जाती है, लेकिन 69 में शरीर छोड़ती है, तो 500 करोड़ उस समय बच्चे कहाँ बने प्रैक्टिकल में? तो कृष्ण को या ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहा जाता, नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जो होकर के गए हैं वो इस समय प्रेजेंट हैं। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा जो होकर गए हैं वो इस समय प्रेजेंट हैं।
कब तक प्रेजेंट हैं?
जब तक 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि उसको अपना पिता स्वीकार न कर ले। इतने बच्चे और किसी को नहीं होते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना?
कौन हुआ
प्रजापिता ब्रह्मा का बाप? कौन हुआ?
कहते हैं परम पिता
परमात्मा।
दो शब्द बोलते हैं,
परम पिता,
परम माने
पिताओं में सबसे बड़ा पिता।
तो जितनी भी आत्माएं हैं ए टू जेड
मनुष्य आत्माएं,
प्रजापिता से लेकर और 500-600 करोड़ की जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं, उन सब का पिता
जिसका कोई पिता न हो
तो कौन हुआ?
प्रजापिता का भी पिता कौन हुआ?
शिव बाप। शिव बाबा नहीं कहेंगे,
बाबा तो कहा जाता है साकार और निराकार के मिल को।
वो सिर्फ आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल, तो परम पिता है
सर्व आत्माओं का पिता।
तो बताया प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई तो बाप होगा ना, बच्चे जानते हैं
हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है।
हमारा दादा कौन है? दादे। बाप है प्रजापिता और दादे
परम पिता परमात्मा शिव,
बाप का भी बाप
ग्रैंडफादर।
तो ग्रैंडफादर भी होगा तो भी कैसा होगा,
साकार होगा कि निराकार?
जरूर साकार होगा। यज्ञ के आज में जो स्वरूप था
वो था
दादे, बाप दादे।
तो हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है, वो अब नई दुनिया रच रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? जो नई दुनिया रचने वाले
दादे
बाप के द्वारा प्रजापिता के द्वारा अब नई दुनिया रच रहे हैं,
रची नहीं है अर्थात पुरानी दुनिया को नई बनाए रहे हैं।
अभी पुरानी दुनिया कोई नई बनी नहीं है,
बनाए रहे हैं।
इस पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराने। कौन से तन?
प्रजापिता ब्रह्मा के भी तन
अथवा ए टू जेड जो भी तन है वो सब पुराने हैं।
नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। लक्ष्मी नारायण के तन कैसे होंगे?
सतो प्रधान नए होंगे। तो देखो इन लक्ष्मी नारायण को,
ये है नई दुनिया के नए तन।
इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं, क्योंकि महिमा सारी किस समय की है?
संगम की।
वह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी
अब वो पुरानी है।
84 जन्म लेने पड़ते हैं ना,
तो इनका भी पूरा हिसाब है।
किनका? कि कौन कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरा हिसाब है।
84 जन्म लेने वाले कितने हैं?
जिनके 84 जन्म होते हैं। तो 84 जन्म जिनको लेने पड़ते हैं उनका भी पूरा हिसाब बताया। क्या पूरा हिसाब है? 84 जन्म कितनों को लेने पड़ते हैं?
बस
9 लाख पूरे 84 जन्म लेते हैं। जन्म तो 84 लेते हैं पूरे। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? जन्म तो 84 होना एक अलग बात, फिर पूरे 84 जन्म होना। तो पूरे 84 जन्म किसके होते हैं?
सब तो नहीं लेते हैं।
तो ठीक है, 500 करोड़ सब तो जन्म नहीं लेते हैं। तो जिनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं उनमें भी पूरे 84 जन्म लेने वाले कितने? 4.5 लाख। 84 जन्म सिर्फ वो ही लेते हैं
जिनका आदि से अंत तक पार्ट।
तो आदि कब कहा जाए? है जो पहले इस सृष्टि पर थे। पहले पहले इस सृष्टि पर कौन थे?
राधा कृष्ण थे।
राधा कृष्ण तो नहीं थे इस सृष्टि पर।
राधा कृष्ण से भी पहले कोई थे
जो राधा कृष्ण को भी जन्म देते हैं?
भले राधा कृष्ण और उनके साथ आने वाले जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले तो हैं, लेकिन पूरे 84 जन्म उनके नहीं होते, कुछ न कुछ कम हो जाता है टाइम, कोई का 50 वर्ष, कोई का कम, कोई ज्यादा। तो जो पहले पहले इस सृष्टि पर थे, जिनका आज से अंत तक पार्ट है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी कि पूरे 84 जन्म लेने वाले कौन, कितने, 4.5 लाख, और सिर्फ 84 जन्म लेने वाले 9 लाख। यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं। यहाँ माना कहाँ, यहाँ माना मधुबन में संगम युग में, जिनके लिए संगम युग है, जो ब्राह्मण बने हैं उनके लिए बताया कि यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को मनुष्य गुरु बैठ करके नहीं समझाते हैं। समझाने वाला कौन है, निराकार परम पिता परमात्मा, इस मनुष्य तन से समझाते हैं। वहाँ और जो सत्संग होते हैं उन तथाकथित ब्राह्मणों के, वहाँ कौन सुनाते हैं, वहाँ तो मनुष्य बैठ करके सुनाते हैं मनुष्यों को, मनुष्य आत्मा बैठ सुनाती है। गुल्लार दादी को कौन सुनाते हैं, मनुष्य आत्मा सुनाती है। तो वहाँ और यहाँ में अंतर है, वहाँ उन सत्संगों में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं और यहाँ परम पिता परमात्मा सुनाते हैं, समझाते हैं, और मनुष्य तन से बैठ समझाते हैं। तो बलिहारी उनकी है, किनकी बलिहारी उनकी है, दूर क्यों कर दिया, ब्रह्मा के तन में जब बोल रहा था ये वाक्य तो बोलने वाला तो बाजू में ही बैठा हुआ था, बोलने वाला सुप्रीम सोल ब्रह्मा के बाजू में ही बैठा हुआ, तो जो बाजू में ही बैठा हुआ है इनकी क्यों नहीं कहा, उनकी क्यों कहा, जरूर आने वाला भविष्य के पार्टी की तरफ इशारा किया है। ब्रह्मा के अंदर वो परमपिता परमात्मा का पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था, अगर परमपिता परमात्मा का प्रैक्टिकल पार्ट होता तो ब्रह्मा की मूर्तियां पूजी जाती, मंदिर बनाए जाते, लेकिन नहीं, ब्रह्मा की न मूर्तियां पूजी जाती हैं, न मंदिर बनाए जाते हैं। तो बलिहारी सारी उनकी है, वो नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते, समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते, पास्ट की बात की या भविष्य की या वर्तमान की, वो नहीं समझाते। कब की बात हुई, पास्ट की बात, यानी यज्ञ के आदि में भी वही समझाने वाले थे, परमपिता परमात्मा मनुष्य तन से, वो अगर नहीं समझाते तो हम ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियां कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि यज्ञ के आदि में ही परमपिता परमात्मा ने साक्षात्कारों का रहस्य, जो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए उनके रहस्य को परमात्मा ने ही खोला था, हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। किसने कहा, ब्रह्मा के तन से वाणी बोली गई जिस समय, तो उस समय बोला कि हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, तुच्छ बुद्धि न होते तो जो साक्षात्कार हुए उनके रहस्य को समझ जाते, लेकिन मुझान हो गई, नहीं समझ सके, गुरु से पूछा उसने नहीं बताया तो औरों से पूछा, वाराणसी गए शायद कोई गुरु बताए, तो भटकते रहे। आखिरी सूरज जहां से उदय होता है वहीं पहुंचना पड़े, तो कलकत्ते में पहुंचे,
भारत का पूर्व कलकत्ता है और वहाँ ज्ञान सूर्य परमात्मा ने किसी मनुष्य तन में प्रवेश करके वो राज समझाया।
तो वो नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं समझते,
हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान लिया है
कि रचयिता कौन है और
उसकी फर्स्ट रचना कौन है, कौन है रचयिता और कौन है रचना है?
रचयिता है सुप्रीम सोल, नहीं
सुप्रीम सोल रचयिता नहीं कहा जा सकता
क्योंकि सुप्रीम सोल तो आत्माओं का बाप है।
आत्माएं रची नहीं जाती,
आत्माएं अनादि हैं या रची जाती हैं? वो तो अनादि।
तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को रचयिता नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिस पहले पहले मनुष्य तन में प्रवेश करता है और ब्रह्मा के भी साक्षात्कारों को क्लैरिफिकेशन देता है तो वो हुआ रचयिता, और बाकी सब नंबर वाले रचना। तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को हमने अब जाना है। हु इज हु इस बेहद के ड्रामा में सब मुख्य पार्टधारी है, कौन क्या है, कौन कौन मुख्य पार्टधारी है।
तो षष्ठ चक्र के चित्र में 5-7 के मुख्य चित्र दिखाए,
वो मुख्य पार्टधारी है।
किनके किनके चित्र दिखाए?
षष्ठ चक्र रूपी ड्रामा में मुख्य पार्टधारी कौन कौन दिखाए गए हैं? 5-7।
अरे राधा कृष्ण,
राम सीता, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट, बस यही 5-7 मुख्य पार्टधारी है।
अच्छा
राधा कृष्ण राम सीता ये मुख्य पाठधारी 4 तो समझ में आए,
बाकी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट
ये अगर मुख्य पाठधारी हो तो नवग्रहों में इनकी पूजा होनी चाहिए, नवरत्नों में उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तो नवरत्नों में पूजा होती नहीं। वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिनमें प्रवेश करते हैं उनकी भी भारतवर्ष में पूजा नहीं होती, क्योंकि ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं जिनमें प्रवेश करते हैं वो हैं सत्युग के बनने वाले नंबर वार आखिरी नारायण, दूसरे नंबर के नारायण से लेकर के और 8वें नारायण तक, तो वो तो कम कलाओं वाले हो गए। यहाँ 84 जन्म लेने वालों की बात हो रही है या कम जन्म लेने वालों की बात हो रही है? यहाँ तो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं, बाकी सब कच्चे। कैसे कच्चे हैं? द्वापर युग से जब दूसरे धर्म वाले आते हैं अपना धर्म स्थापन करने तो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हो जाते। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि उन्होंने परमात्मा से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, बीच में ही अधूरी पढ़ाई पढ़कर निकल गए। तो इस बेहद के ड्रामा में सार मुख्य पाठधारी कौन कौन है, हु इज हु, हमने ये सब जाना है। तो कौन कौन हुए? विष्णु के पार्ट में आने वाली 4 आत्माएं तो ये हो गई, लक्ष्मी नारायण राम सीता, और बाकी ऊपर से जो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं जिनमें, वो तो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, लेकिन उनको शरीरों को जो जन्म देने वाले हैं वो है बीज, उनके भी बाप। कैसे बाप है वो? ऐसे वो बाप हैं कि जिनको जन्म देते हैं वो भले दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वो स्वयं कन्वर्ट नहीं होते अपने जीवन में, जैसे सिद्धार्थ, उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ हुआ सत्ययुग का तीसरा नारायण। वो तीसरा नारायण द्वापर युग में जब पहुंचता है तो महात्मा बुद्ध की सोल ऊपर से आकर के उसमें प्रवेश करती है। तो सिद्धार्थ वाली आत्मा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाती, वो हो गई कच्ची आत्मा, कम जन्म लेने वाली, कम कलाओं वाली। लेकिन उसको जो जन्म देने वाला, शारीरिक जन्म देने वाला बाप है शुद्धोधन, वो अपने जीवन में कन्वर्ट नहीं होता। बच्चा भले चला जाए लेकिन धरत परिये पर धर्म ने छोड़ी। बच्चे ने बहुत बड़ा काम कर दिया, देश विदेश में नाम कमाई लिया और बाप उससे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि प्रभावित माना प्रजा, और प्रजा हो गई तो मुख्य पाटदारी कहाँ हुआ। तो वो आत्मा उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होती, हाँ अगले जन्म में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसे कन्वर्शन कहा जाएगा। कोई जीते जी इस जन्म में कन्वर्ट न हो और अगले जन्म लेकर के कन्वर्ट दूसरे धर्म में चला जाए तो उसको कन्वर्शन कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और क्यों कन्वर्ट हो जाती दूसरे धर्म में अगले जन्म में? इसलिए कन्वर्ट हो जाती कि बच्चे के प्रति बाप का मोह हो जाता है कि बच्चे ने बहुत महान काम किया, हमने उसका कोई सहयोग नहीं दिया, तो अंत मते सो गते हो जाती। उस बाप को भी अगले जन्म में जाकर के जन्म लेना पड़ता है, लेकिन इस जन्म में धर्म को परिवर्तित नहीं किया इसलिए उसका भाग्य बहुत बन जाता है। उस गीता में भी लिखा है स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना सही लेकिन दूसरे का धर्म बहुत दुख देने वाला है, उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपनी धारणाओं पर पक्का रहना चाहिए। तो ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, गाते भी हैं बनी बनाई बन रही है वो कुछ बननी ना, क्या जिनको जिस धर्म में जाना होगा, जिनको जिस धर्म का पार्ट बजाना होगा वो सब पहले से रूद है, क्योंकि जिन्होंने जिस जिस धर्म में 63 जन्मों में पार्ट बजाया है वो ही अभी शूटिंग पीरियड में भी वही पार्ट शूटिंग करेंगे, रिहर्सल करेंगे, अपना पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो सब कुछ बना बनाया बन रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो गायन ये भक्ति मार्ग में करते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु ये अभी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं लाडले बच्चे, ये तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं, अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकल पड़े, तो यात्रा भी बड़ी सहज हो गई है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे तो शूटिंग पीरियड में भी कैसा होता होगा, पहले पहले बुद्ध रूपी पांव से पैदल यात्रा करते हैं, उसमें मेहनत ज्यादा होती है, और फिर बाद में तो एरोप्लेन वगैरह निकल पड़ते हैं, बेहद के एरोप्लेन भी है, बेहद की संकल्पों की ट्रेन भी है जिसमें ढेर के ढेर इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो ये सबको पता है कि कोई भी धर्म पिता आकर के अपने धर्म की स्थापना करता है तो शुरू शुरुआत में कठिनाई ज्यादा होती है और बाद में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है संदेश देने वालों का, इसलिए सहज हो जाता है। तो आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे और मनुष्य बेहाल हो जाते हैं। छोटा झाड़ होता है तो उसको तूफान ज्यादा असर करेगा, छोटा झाड़ होता है तो उसको तूफान बहुत लगते। तो आगे पैदल यात्रा पर जाते, पैदल माने पांव पांव माने बुद्ध रूपी पांव से यात्रा करना होती थी। अपनी बुद्धि से जजमेंट करना पड़ता है शुरुआत में, तो उनकी है बलिहारी। बाकी पीछे पीछे जो देखा धूनी चल पड़े, उनकी कोई विशेष बलिहारी नहीं हुई, उनके लिए तो सहज हो जाता है। मनुष्य जब पैदल यात्रा करते थे तो बेहाल हो जाते थे, फिर कोई तो वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प ये यात्रा चलती है जिस्मानी, द्वापर से लेकर ये भक्ति मार्ग की यात्रा आधा कल्प चली, परंतु मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? है? कारण क्या है जिस्मानी यात्राओं पर जाने का? कारण क्या? भगवान को ढूंढने जाते हैं। किस लिए जाते हैं? भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थों में जाते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं, या एरोप्लेन से यात्राएं करते हैं, या मोटर से यात्रा करते हैं, लेकिन जाते किस लिए हैं? भगवान को ढूंढने के लिए कि भगवान वहां मिल जाए। अब भगवान कहीं बैठा तो नहीं है? भक्ति मार्ग की वो जड़ मूर्तियां, उनमें कोई भगवान बैठा हुआ है क्या? भगवान के जड़ चित्र वहां पूजे जाते हैं। कहा जिन यात्राओं पर जाते हैं वहां क्या पूजा जाता है? भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग भी संगम मुल्क पर होती है। कैसे? माउंट आबू में जाते हैं तो जड़ चित्र वहां जाते हैं देखने के लिए, दर्शन करने, महिमा करने। चित्रकारी के लिए बनाए जाते हैं, दर्शनार्थ, महिमार्थ, इसीलिए तो बनाए जाते हैं, स्मरणार्थ, स्मरण करने के लिए, महिमा करने के लिए। तो वहां किस लिए जाते हैं? जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हैं। तो जहां जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हो वो हो गई जिस्मानी यात्रा, क्योंकि वहां चैतन्य में भगवान तो बैठा हुआ नहीं है। और यहां तो प्रैक्टिकल में भगवान बाप आकर के पढ़ाते हैं संगम युग में, यहां कोई जड़ चित्र की बात नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। किनके बनाते हैं? जो पहले होकर के गए हैं उनके जड़ चित्र बनाए देते हैं। तो माउंट आबू में भी किसका जड़ चित्र बना हुआ है? जो ब्रह्मा होकर गए उनका जड़ चित्र बनाए दिए। तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग हो गया। तो जड़ चित्र बनाते हैं चैतन्य में तो भगवान उनको वहां मिल ना सके। कहा जो जिस्मानी यात्रा करने के लिए जाते हैं वहां उनको भगवान का चैतन्य चित्र तो मिल नहीं सकता। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र है। भक्ति मार्ग की यात्राओं में जैसे अमरनाथ पे जाते हैं तो बाद ही जो शिवलिंग है वो जड़ है या चैतन्य है? वहां तो जड़ शिवलिंग है, वो जड़ चित्र है। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। वो किस लिए यात्रा करते हैं जिस्मानी यात्रु? जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। और तुम शिवलिंग के चैतन्य चित्र को देखने के लिए यात्रा करते हो? अच्छा, कंपना छोड़ कहा लोग गए? तो वो हो गया भक्ति मार्ग, जहाँ जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं, ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं। और यहाँ तो भगवान खुद बैठ मनुष्य तन में पढ़ाते हैं। तो ये है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। तो ये एक भक्ति मार्ग की रसम है। क्या कि जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते हैं। ये रसम रिवाज कहाँ से शुरू होती है? दुनिया की जितनी भी रसम है, रिवाज है, त्योहार है, ये सब कहाँ से इनका फाउंडेशन पड़ता है? संगम युग से फाउंडेशन पड़ता है। तो जरूर संगम युग में भी जड़ चित्रों का दर्शन करने जाते होंगे, क्योंकि संगम युग में तो दोनों का संगम है। काय काय का संगम है?
4388 का प्रातः क्लास
है। 4388 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्यांश। तो ये एक भक्ति मार्ग की रसम है जो भक्ति मार्ग में चली आती है। क्या जिस्मानी तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं, जानते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, चाहे शिवलिंग की यात्रा करने जाएं, अमरनाथ पर जाएं, या किसी दूसरे मंदिर में जाएं, या देवताओं के मंदिर में जाएं, लेकिन उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते कि उन्होंने क्या कर्म किए थे जो हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि पूजा का आधार है प्योरिटी। उन्होंने प्योरिटी का ऐसा कौन सा कर्म किया जो उनकी पूजा होती है? क्योंकि अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है कि देवताओं की वो कर्मेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, कमल हस्त, पाद पाद कमल ऐसे कहते हैं ना, तो वो क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन कर्म इंद्रियों से उन्होंने पवित्र कर्म किया है, अपवित्र कर्म नहीं किया, सुख देने का कर्म नहीं किया, सुख देने का कर्म किया। बाप की याद में जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। अच्छा, तो ये सब बायोग्राफी को भक्त लोग नहीं जानते कि ये कौन है और कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु उनको भी जानते नहीं है। कहाँ मनाई जाती है शिव जयंती, कौन मनाते हैं? दुनिया वाले, दुनिया वाले भक्त शिव जयंती करके नहीं मनाते हैं। वो क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि करके मनाते हैं। जयंती कौन मनाते हैं? शिव जयंती जो बनाते हैं तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तो वो शिव जयंती तो मनाई जाती है परंतु उनको भी जानते नहीं हैं जिनकी शिव जयंती मनाते हैं। क्यों? कैसे मालूम कि नहीं जानते हैं? जानते तो हैं कि वो शिव ज्योति बिंदु है, जानते हैं तब तो मनाते हैं। शिव क्या है? बिंदु है। आत्मा क्या है? बिंदु है। कीड़े मकोड़े क्या है? बिंदु है। पशु पक्षी क्या है? बिंदु है। अरे तो आत्मा है भी सब बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, तो विशेषता क्या हुई? और बिंदु की तो जयंती हो नहीं सकती, मरंती होगी तो किसकी होगी? शरीर की होगी या आत्मा की होगी? आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी जीती है क्या? ना आत्मा मरती है ना आत्मा जन्म लेती। ये तो शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है, तो जयंती किसकी मनाई जाएगी, साकार की या निराकार की? जयंती तो साकार की मनाई जाएगी। तो जयंती मनाते हैं परंतु ये नहीं जानते कि हम किसकी जयंती मनाते हैं, वो कब जयंती हुई थी। क्योंकि परमात्मा शिव प्रवेश करता है उसकी तिथि तारीख का तो पता ही नहीं चलता। कब आया कब चला गया किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। तो उन्हें कैसे मालूम पड़ गया कि शिवरात्रि के ही दिन फाल्गुन या माघ के महीने में परमात्मा आए। वो तो भक्ति मार्ग में जैसी रस्म चली आ रही है वैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी उसी दिन महाशिवरात्रि वो शिव जयंती मना लेते हैं। तो ये तो कोई जानकारी नहीं हुई। आजकल तो इसी उत्सव को भी उड़ाई दिया है। जिस समय बाबा ने ये वाणी ब्रह्मा के मुख से बोली उस समय की बात बताई, क्योंकि 1869 में बाबा ने शरीर छोड़ा था तो उस समय से पहले शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं होती थी, कोई मान्यता नहीं थी भारतवर्ष में। कृष्ण जयंती राम जयंती इनकी छुट्टी होती थी, लेकिन शिव जन्म लेता है उसकी भी जयंती होनी चाहिए ये किसी की बुद्धि में नहीं था। तो जरूर है, बाद में क्या हुआ, बाद में शिवरात्रि की छुट्टी होने लगी। तो जब से शिवरात्रि की गजेटेड हॉलीडे होने लगी, मनाई जाने लगी, ये उत्सव मान्यता प्राप्त हो गया, तो जरूर बाप ने साकार में जन्म लिया होगा, प्रैक्टिकल परमात्मा पाठधारी प्रत्यक्ष हुआ होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रत्यक्ष होता है, जो बिरले ब्राह्मण होते हैं वो उसे मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ उसको जानने वाले कोई कोई बिरले बच्चे हैं। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जयंती का उत्सव होता है, बाद में पहले नहीं मनाते थे, पहले तो उस उत्सव को ही उड़ाई दिया था, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही था। किनका? शिव का नाम रूप अध्यक्ष काल सा प्राय लोप होना था। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। बोलते हैं का बाप अभी प्रैक्टिकल में है, क्या प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, चैतन्य रूप में पार्ट बनाने वाला हो उसे कहेंगे प्रैक्टिकल, और शरीर के साथ चैतन्य में पार्ट बजाने वाला हो ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे? इम्प्रैक्टिकल। तो वो बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है सुख का सागर है वो अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है, जिस अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं शिवलिंग के दर्शन करने भगवान को ढूंढने वो भी कौन है? शिव बाबा। बाबा माने साकार, बाबा माने ग्रैंडफादर, क्योंकि बिंदु अगर है तो वो सिर्फ बाप है आत्माओं का, आत्माओं का बाप, मेल आत्माओं का बाप, भाई बहनों का भी बाप नहीं। किसका बाप? आत्मा आत्मा भाई भाई का बाप। तो बाप और बच्चों का संबंध बनता है सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बिंदु बाप से, दूसरा कोई साकार संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक वो साकार में प्रवेश न करे, चाहे वो ग्रैंडफादर का संबंध हो, चाहे वो साजन सजनी का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे भाई भाई बंधु सखा के रूप में संबंध हो। तो अमरनाथ भी शिव बाबा है, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। कहाँ दिखाते हैं? है? भक्ति मार्ग में वहाँ दिखाते हैं कि बर्फ का लिंग बन जाता है। अरे लिंग भी कहीं बर्फ का बनेगा क्या? लिंग ठंडा हो सकता है? जो खड़ा हुआ लिंग वहाँ दिखाई देते हैं बर्फ का, वो ठंडा हो सकता है खड़ा हुआ? लिंग गर्म होता है या ठंडा होता है? वहाँ तो उन्होंने खड़ा हुआ लिंग दिखाई दिया। अरे ये कर्मेंद्रियों की शीतलता की बात दिखाई गई है, कोई नपुंसक होने की बात नहीं है। एवर प्योर है तो संसार एवर प्योर को कैसे जाने, कैसे पता चले कि ये एवर प्योर है और ये देवताएं सिर्फ प्योर है? नंबर वार कुछ एक्टिविटी करेगा तब तो दुनिया जानेगी कि ऐसे ही एवर प्योर हो गया। कोई प्रूफ तो वो प्रूफ की यादगार दिखाई गई है अमरनाथ मंदिर में। क्या यादगार दिखाई गई है? कहाँ यादगार दिखाई गई है? ऊंचे पहाड़ पर। ऊंचे पहाड़ का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज, पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, बर्फ की तरह लिंग हो जाता है ठंडा। माना शीतल कर्मेंद्रियां हो जाती, दुखदाई नहीं होती। तो उन्होंने तो बर्फ का लिंग बना दिया है, स्थूल लिंग बना दिया है भक्ति मार्ग में। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो देखो कितने लगाए हैं, क्योंकि अर्थ नहीं समझा तो गपोड़ा ही हो गया। तो उन जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। तकलीफ क्यों होती है? तो उन जिस्मानी यात्राओं पर जाते हैं, उनका अर्थ समझते नहीं, उनकी बायोग्राफी को जानते नहीं है, ऐसे ही बेचारे चक्कर लगा करके भाग जाते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, न कुछ समझ आती है। ये तो है रूहानी यात्रा और वो है जिस्मानी यात्रा। रूहानी यात्रा में तो जरूर बायोग्राफी समझ में आएगी ना कि उन्होंने क्या कर्म किए थे जो उनकी कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। देवताओं की भी पूजी जाती हैं तो शिव की भी कर्मेंद्रिय पूजी जाती है। शिव की कौन सी कर्मेंद्रिय पूजी जाती है? लिंग पूजा होती है। लिंग में न हाथ है, न पांव है, न कान है, न आंख है, सिर्फ लिंग है। माना लिंग माना साकार शरीर, जिसमें कर्मेंद्रियों का भान नहीं रहता, ऐसी ऊंची स्टेज निराकारी है। आत्मिक स्टेज बनी हुई है, जिस आत्मिक स्टेज में किसी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं लग सकता। जैसे देवताओं की आत्मिक स्टेज होती है, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता, कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो वो कर्म पूजे जाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में कितने गंदे चित्र बने हुए हैं, भक्तों की आंखों में वो गंदे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि समझ नहीं है। कुमार के सूर्य मंदिर में गंदे चित्र बने हुए हैं, भक्तों को गंदे चित्र दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो उनकी गहराई को नहीं जानते कि जो चित्र बने हुए हैं उनमें उनका अंदर का भाव उस समय क्या था, अंदर से वो कितने शीतल थे, दिलो दिमाग से और कर्मेंद्रियों से भी। सिर्फ ये प्रूफ दिखाया गया मंदिर में, नहीं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो न असली चित्रों को मंदिर में से निकाल सके? भारत के किसी चौराहे पर कोई गंदा चित्र लगाता है असली चित्र तो पकड़ा जाएगा, सरकार पकड़ लेगी, उसको दंड देगी। मंदिरों में सरेआम रखे हुए हैं वो चित्र, लेकिन किसी में ताकत नहीं कि उन चित्रों को हटाए सके। क्यों नहीं हटाए सके? क्योंकि उनमें सच्चाई है, उनमें प्योरिटी है। तो ये है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा में बहुत फर्क है। रूहानी यात्रा करने वाले बुद्धि की कसरत करते हैं, माना पैदल यात्रा करते हैं। जो बुद्धि की कसरत करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, बुद्ध रूपी पांव से चलते हैं, तो उनको कुछ प्राप्ति विशेष होती है, क्योंकि इनमें मनन चिंतन मंथन करने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, कोई अंधश्रद्धा की बातें नहीं है कि किसी ने कह दिया कि परमात्मा एवर प्योर है। उन्होंने कहा हाँ सत्यवचन महाराज, देवताएं पवित्र हैं। हाँ उन्होंने कहा सत्यवचन महाराज। अरे पवित्र है तो कैसे पवित्र हुए? देवताएं पवित्र हैं और मनुष्य पवित्र हैं, प्रूफ चाहिए। आज की दुनिया ऐसी नहीं है जो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार हो। ऐसे तो सन्यासी भी कहेंगे कि हम भी पवित्र हैं, दूरवाज खुशवाज होकर के तो सब पवित्र रह लेते हैं, ये क्या बड़ी बात हुई? कोई 10 साल जेल में रहे और बाद में उसको निकाला जाए और वो डींग हाँकने लगे, हमने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, लड्डू किया तुमने, ऐसे कर ब्रह्मचर्य तो तुम्हारी क्या नाम मजबूरी हो गई, इसमें कोई खासियत नहीं हुई। खासियत तो वो है कि साथ भी रहे और बुद्धि में कोई भी लेप छेप न लगे, तो प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। जो देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, जिनका भक्ति मार्ग के मंदिरों में गायन है, पूजन है, वो इस समय की बात है, सतयुग की बात नहीं है। इस समय ऐसी स्टेज बनाई है प्रैक्टिकल में जो दुनिया उनको मात्र देखती है। तो परमात्मा शिव की भी प्रैक्टिकल पार्ट, परमात्माधारी की भी ऐसी उन देवताओं से भी जास्ती ऊंची स्टेज है जिसको दुनिया आज पूजती है। गांव-गांव में, शहर-शहर में मंदिर बने हुए हैं, उस पूजा को, वो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा को कोई इनकार नहीं कर सकता। वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है शिव का मंदिर, जहाँ पार्वती का संग शिव के साथ दिखाया गया। तो ये रूहानी यात्रा है, इसमें बुद्धि चलाने की बात है, बुद्ध रूपी पांव से पैदल चलने की बात है, इसमें और कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, अब हमको स्मृति आई है। भक्ति मार्ग में जिन चर्जर चित्रों को देख करके हमें याद करते आए, हमें कोई स्मृति नहीं थी, अब हमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 84 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए, नीचे गिरते गए, वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के पढ़ते आए और गिरते आए, पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो होना ही है जरूर,
किसी को पाता जरूर है, एक भी मनुष्य वापस मेरे पास नहीं आ सकता भक्ति करने से। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। सबको मैंने प्रजापिता से लेकर के 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक सबको नीचे आना है। दूसरा पीठ तो नंबर वार का मिसाल लिया जाता है। नंबर वन लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे और वह कोई तमो प्रधान, जिसमें फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन बनना है। फिर प्लस में माँ को रेस में वन एड प्लस होती रहती है। जब रेस होती है तो कोई पहले पहुंचता है और कोई पहले पहुंचते पहुंचते जब तक वो पहुंचे तब तक कोई दूसरा पहुंच जाता है हाई जंप लगा के, तो फिर उसको प्लस में देना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी तक हम समझते थे कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो ही अप्पल नंबर है, लेकिन एडवांस नॉलेज में क्या बात खुल जाती कि सतयुग में बनने वाले लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ नहीं है, उनसे भी ऊंचे कोई और लक्ष्मी नारायण है जो संगम युग में नर से नारायण बनते हैं, क्योंकि वो तो नर से प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे अगले जन्म में, और तुम इसी जन्म में नर से नारायण बनते हो। तो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी प्लस में आते हैं। माताओं को लिफ्ट देनी होती है, क्या था ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ और प्रजापिता का पार्ट क्या हुआ? ब्रह्मा माँ को लिफ्ट दी गई ताकि चढ़ाई ऊंची चढ़े, आगे आगे बढ़े, तो लिफ्ट दी गई। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, तो माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, माता है तो माता किसे कहा जाए, वंदे मातरम किसे कहा जाए? जो पति परायण हो तो उसको वंदे मातरम कहा जाता है। कोई विधवा को वंदे मातरम कहा जाता है क्या? विधवा को वंदे मातरम, विधवा की भारतवर्ष में इतनी मान्यता, वो कोई मान्यता नहीं होती, नीची दृष्टि से देखते पुरुष कभी पतिव्रता नहीं होते हैं। पत्नी व्रता होती है क्या पुरुष? एक पत्नी मर गई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी मरी तीसरी शादी कर ली, तो पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते हैं, स्त्री पतिव्रता होती है। तो वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं कहा जाता। किस लिए? क्योंकि स्त्री पति परायण होती। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। कब हो जाती हो ब्रह्मा कुमार कुमारी? जब बाप के बने हो तब। बाप का कैसे बना जाता है? अरे हमने जान लिया कि हम आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, हम बाप के बन गए। बिंदु का बनना और न बनना तो कोई मतलब ही नहीं। माता गुरु बिगड़ कभी किसी का उद्धार नहीं होता है। गुरु तो बहुत देर के देर, फिर भी कलयुग घोर अंधेरा हो गया है, कितने गुरु गुसाई हो गए, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में इनों के मंदिर भी बने हुए हैं, किनों के गुरु गुस्वाइयों के। यही तो वास्तव में मंदिर कहा उनको जाता है जिसमें देवता है। सन्यासियों लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है जहाँ पूजा की जाए। क्यों सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों उन्होंने जो पवित्रता का पालन किया है वो असली पवित्रता की पालना नहीं की, ढकोसला किया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती मंदिर बनाकर। और देवताओं की तो मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। मंदिरों में तो देवता ही रहती हैं क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं का भल आत्मा पवित्र है परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता। शरीर फिर भी मलमूत्र से ही पैदा होता है और देवताओं का देवताओं की पैदाइश कोई भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं होती। देवताओं की पैदाइश तो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है, इसलिए उनको श्रेष्ठ आचार्य कहा जाता है। क्योंकि देवताएं हो जाती हैं ऊर्ध्वरेता, प्रैक्टिस करते करते जो शक्ति है वो ऊपर चढ़ने लग पड़ती है, नेत्रों में और मुख में आभा आ जाती है। अभी भी हम कभी कभी अनुभव करते हैं सब बच्चे कि जब याद की अवस्था बहुत अच्छी होती है तो चेहरे में रौनक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, और जब अवस्था खराब होती है तो तांबे जैसा चेहरा हो जाता है। तो शरीर पवित्र अभी किसी को मिल नहीं सकता। सतयुग में सबके पवित्र शरीर होते हैं देवताओं के, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी अभी तुम देवता बन रहे हो और बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह है सत्व प्रधान संन्यास और वो है रजो प्रधान संन्यास। रजो प्रधान संन्यास क्यों बताया? क्योंकि जब रजो प्रधान समय होता है तब वो संन्यास होता है, और ये संन्यास की शुरुआत होती है सत्व प्रधान समय से। तो बाप के सिवाय ये सत्व प्रधान संन्यास कोई सिखला नहीं जाता। तो बाबा ने समझाया है कि वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं। कुछ भी कोई तकलीफ की बात नहीं। और तो कितना तकलीफ देते हैं कर्मेंद्रियों को, कितनी दवाइयां खाते हैं। यहाँ बाप कोई तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज है। क्या कहते हैं मुरली में?
मुरली में ये वाक्य सुना कभी कि कर्म इंद्रियों से भले कोई कर्म करो लेकिन क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो, ये शर्त जरूर पालन करो। लेकिन होता क्या है? कर्म करने के लिए लपक झपक तैयार हो जाते हैं और फिर याद करना भूल जाते हैं, तो फिर दंड भी पड़ जाता है। कोई कार्य बताया है और उसमें जो शर्त बताई वो शर्त अगर पूरी नहीं की तो फिर सफलता नहीं मिल सकती और ही दंड के भागी बन जाते।
तो बाप कोई तकलीफ नहीं देते है तो बहुत है। वो जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है और ये रूहानी यात्रा एक ही प्रकार की है। ये है राजाई के लिए यात्रा क्या? जितना जितना कर्मेंद्रियों को के ऊपर कंट्रोल करना सीख लोगे उतनी उतनी राजाई मिल जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा हुआ है, चित्र है तो जरूर उन्होंने कोई चरित्र किया होगा। कौन सा चरित्र किया जो विश्व के मालिक बन गए? जरूर उन्होंने इंद्रिय जीते जगत जीत बनने का पुरुषार्थ प्रैक्टिकल किया है और उन्होंने जीता है अपनी इंद्रियों को। सारी जगत ने जाना है कि ये जगत जीत है, इंद्रिय जीत है, माया जीत है।
तुम बच्चे जानते हो उन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई है? वो नहीं जानते कौन
वो सन्यासी रहस्य को नहीं जानते कि उन्होंने राजाई कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आ गई जिन्होंने राजाई पाई ली हो?
नहीं, इस पुरानी दुनिया के पुराने मनुष्यों को ही ऐसा योग सहज राजयोग बाप सिखाते हैं, जिस योग के आधार पर पढ़ाई के आधार पर
पास होकर के प्रैक्टिकल में विश्व की राजाई प्राप्त करते हैं।
तो कोई नई आत्मा नहीं आ गई ऊपर से जिनको भगवान ने राजाई दे दी हो? नहीं, इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है जिसको रिजुविनेट या कायाकल्प तरु भी कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से ये बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। क्या क्या सिखाने आते हैं? ज्ञान भी सिखाते हैं और फिर राजयोग भी सिखाते हैं, लेकिन फर्क है ज्ञान सिखाते हैं। बेसिक नॉलेज में भी ज्ञान सिखाया जाता है, माँ भी बेसिक नॉलेज देती है। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, सिखाया, समझाया, लेकिन राजयोग नहीं सिखाया।
कर्मेंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि ये कार्य तो बाप प्रवृत्ति मार्ग में रह कर सिखाते हैं। सिखाने वाला खुद निवृत्ति मार्ग वाला हो और सीखने वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले हो तो पढ़ाई चलेगी। मुर्गी ने तो बाबा ने बोला है कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राज्य को सिखा नहीं सके तो बात उल्टी होगी। जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाएगा, वकील होगा तो वकील बनाएगा, खुद राजयोगी होगा, प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग का होगा तो दूसरों को प्रवृत्ति मार्ग का राजयोगी बनाएगा। नहीं तो कोई सीखेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है रूहानी, तुम बैठे हुए हो अथवा चलते करते उठ के बैठे यात्रा करो। तुम सिर्फ बुद्धि से बात को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम अब वह चार धाम आदि नहीं करते हो। भूषण भक्ति मार्ग की जिसमानी तीर्थों पर जाए वहां से लौट आकर के घर में विक्रम बनते हैं तो फायदा क्या हुआ? जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं और घर वापस गए फिर विकारी बनने शुरू हो गए। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो पंडित लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं और वहां के रहवासी पंडित वो अपवित्र रहते हैं। क्या बात? हरि के द्वार के जो रहवासी पंडित हैं वो अपवित्र, उनकी बुद्धि अपवित्र। कहां के द्वार के रहवासी? हरि के द्वार के रहवासी। तुम्हारी यात्रा देखो कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि खाना नहीं है इसमें। इसमें धक्के आदि खाने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं लाले बच्चे उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं, देह अभिमानी इंसानों से बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा इन आर्गंस द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है, आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, न परमात्मा इन आंखों से दिखाई पड़ता है। इन आंखों से आत्मा परमात्मा देखा जा सकता है? आत्मा के पार्ट को हम पहचान सकते हैं आंखों से? नहीं। बुद्धि के तीसरे नेत्र से आत्मा के पार्ट को पहचाना जाता तो परमात्मा पार्ट भी पहचाना जा सकता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। दिव्य बुद्धि चाहिए या तो दिव्य दृष्टि चाहिए?